स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। आज सुनिए हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग, समय काटने वाले। मैं वो पत्थर हूं जिस पर कोई भी अपने ना कटने वाले समय को पटक पटक कर मार डालता है। कुछ लोग मेरा ये पत्थरी उपयोग नियमित रूप से करते हैं और मैं होने देता हूं। मैं जानता हूं वो घर में पूरी ईमानदारी के साथ समय काटने की कोशिश करते हैं, पर समय फिर भी बच जाता है तो उसे झोले में डालकर मुझ जैसे के पास चले आते हैं और उसे जोर जोर से मेरे ऊपर पछाड़ने लगते हैं। समय जब तार तार होकर मर जाता है तो वे प्रसन्न और हल्के होकर चले जाते हैं और मैं अपने चुटीले सर को देर तक सहलाता रहता हूँ और सोचता हूँ, सरप्लस समय के कपड़े को पछाड़ने के लिए मैं धोबी का पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। पर समय रोज पैदा हो जाता है और उसे रोज मारना पड़ता है। समय को ना मारो तो वो अपने को मार डालता है। ऐसी क्या कोई तरकीब नहीं कि सारे समय को एक बार ही ऐसा मार डाला जाए कि वो फिर पैदा ना हो। एक सत्याग्रही ने मुझे बताया कि है, कहने लगे, जेल में जब मैं जासूसी किताब पढ़ रहा था, विनोबा ने देखा तो पूछा, क्या अध्ययन कर रहे हो? मैंने कहा, जासूसी किताब पढ़ रहा हूं। बाबा ने पूछा, इसे क्यों पढ़ते हो? मैंने जवाब दिया, समय काटने के लिए। विनोबा ने कहा, समय तुम्हारी समस्या है, ऐसा करो ना, इस खंबे पर सिर दे मारो, सारा समय एक बारगी कट जाएगा। सलाह नेक है, मगर ऐसी थोक काट बिरले ही करते हैं। अक्सर लोग फुटकर समय काटते हैं। ऐसे एक ताजा समय काटनहार मेरे पास जब तब आ जाते हैं। रिटायर्ड आदमी है, जिसे एक्सटेंशन ना मिले उसे रिटायर्ड आदमी कहते हैं। एक्सटेंशन की अवधि से ही वो टूटने लगता है। माथत आपस में कहते हैं, बुढ़ा एक्सटेंशन पर चल रहा है। एक्सटेंशन वाला आठों पहर अनुभव करता है कि वो रेत के ढेर पर बैठा है। वे सज्जन कहीं से रिटायर होकर यहीं बेटों के पास आकर रहने लगे हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं। साहित्य प्रेमी के लिए मैं बकरा हूं, चाहे जब हलाल किया जा सकता हूं। वे अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें उबा देती हैं। मैंने हिंट देना शुरू किया। टालने के लिए मेरे पास कई तरकीबें हैं। तमाखू खाकर पीक मुंह में भर लेता हूं, बोलता ही नहीं। तमाखू मेरी रक्षक है। अगर तमाखू खाने की आदत ना होती तो मुंह बंद रखने के लिए बच्चों की फीडिंग बॉटल मुंह में रखनी पड़ती। तमाखू से सामने वाले ना उठे तो एकाएक उदास और गुमसुम हो जाता हूं, जैसे संसार का नाश साफ देख रहा हूं, या दार्शनिक मुद्रा में बैठ जाता हूं। आसार संसार में दो घड़ी बोल भी लिए तो क्या होता है, चाहिए। उन्होंने कोई हिंट स्वीकार नहीं किया। तब मैंने पूछा, कहां जाने का इरादा है? ये प्रश्न तुर्क का इक्का है। इसका मतलब है, आप जा कहीं और रहे थे, यहां तो यूं ही टपक पड़े। इस अर्थ को समझकर आदमी उठ जाता है। अगर आपको ये प्राण घातक जवाब भी मिल सकता है कि कहीं नहीं, आपके पास तक ही आया था। वे सज्जन ये कहकर कि जरा बाजार जाना है, उठ गए। एक आध मिनट बाद मैं भी पान खाने चौराहे की तरफ चला। मैंने देखा वे चौराहे पर खड़े हुए तय नहीं कर पा रहे कि कहां जाएं। वे कभी बाईं तरफ की सड़क पर मुड़ते, फिर लौटकर चौराहे पर आकर दाएं मुड़ जाते, पर फिर लौट पड़ते। दो तीन मिनट उन्हें ये तय करने में लगे कि किस तरफ किसके पास जाएं, बाकी वक्त कहां गुजार दें। उन्हें किसी का ख्याल आता और वे एक सड़क पर चल देते। दो चार कदम चलने पर सोचते, वो शायद घर पर ना हो, लौट पड़ते। दूसरे आदमी के घर की तरफ बढ़ते, फिर कुछ सोचकर लौट पड़ते। मुझे बहुत दया आई, सोचा इन्हें लौटा लूं और कहूं कि जब तक बैठना हो बैठें। पर तभी आत्मरक्षा की भावना तीव्र हुई, मुझे काम भी करना था। दया की भी शर्तें होती हैं। एक दिन एक गाय तार में फंस गई थी। उसकी तड़प से मैं द्रवित हो गया। सोचा इसे निकाल दूं, पर तभी डरा कि निकलते ही ये खीज में मुझे सींग मार दे तो। मैं दया समेत उसे देखता रहा। वृद्ध सज्जन मुझे ठीक उस गाय की तरह लगे जो त्रासदायी खाली समय के कटीले तारों में फंसे थे। मैं उन्हें निकाल सकता था पर निकाल नहीं रहा था। दया की भी शर्तें होती हैं। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स यानी जानवरों पर होने वाली क्रूरता पर रोक लगाने वाले संगठन के एक सदस्य ने बर्फ तोड़ने के कीले से कोंच कोंच कर अपनी बीवी को मार डाला था। दया की शर्तें होती हैं। हर प्राणी दया का पात्र है, बशर्ते वो अपनी बीवी ना हो। वे जब तब मेरे पास आने लगे। ये अजब बात है कि जिस पर दया आए उससे डर भी लगे। एक शाम वे मुझे बस स्टेशन पर खोमचे के पार खड़े चाट खाते दिख गए। मेरी दया और बढ़ गई। उन्हें घर में इच्छानुसार खाने को न मिलता होगा। बूढ़ा आदमी चटोरा हो जाता है। मेरे एक रिश्तेदार अंतिम सांसें ले रहे थे। बेटों ने कहा, बाबूजी राम नाम लो, दान पुण्य करना हो तो कर दो, कुछ इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने ना राम का नाम लिया ना दान किया। बोले, भैया भैया मुझे आलू बोंडा खिला दो। एक दिन वे मेरे पास बैठे थे कि विश्वविद्यालय के दो छात्र नेता आ गए। वे युवा असंतोष पर मुझसे बातें करने लगे। रिटायर्ड सज्जन बीच में ही बोलने लगे। वे लड़कों को उपदेश देने लगे। लड़कों ने कहा, जरा आप हमें बात कर लेने दीजिए। वो चुप हो गए। लड़के चले गए तो वे बोले, हमारा जिंदगी भर का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम कुछ कहते हैं तो ये लड़के सुनते क्यों नहीं। मैंने कहा, शायद इसलिए कि अनुभवों के अर्थ बदल गए हैं। वे समझ गए, उदास हो गए। कहने लगे, हमारी तो पूरी जिंदगी दबते हुए गुजर गई। जब हम जवान थे तब ये मान्यता थी कि बड़ों से दबो, हम तब बुजुर्गों से दबे, अब ये हो गया कि लड़कों से दबो, तो अब हम बुढ़ापे में लड़कों से दब रहे हैं। हमारी जिंदगी तो दबते हुए गुजर गई। रिटायर्ड आदमी की बड़ी ट्रेजेडी होती है। व्यस्त आदमी को अपना काम करने में जितनी अक्ल की जरूरत पड़ती है उससे ज्यादा अक्ल बेकार आदमी को समय काटने में लगती है। रिटायर्ड वृद्ध को समय काटना होता है। वो देखता है कि जिंदगी भर मेरे कारण बहुत कुछ होता रहा है पर अब मेरे कारण कुछ नहीं होता। वो जीवन संदर्भों में अपने को जोड़ना चाहता है पर जोड़ नहीं पाता। वो देखता है कि मैं कोई हलचल पैदा नहीं कर पा रहा हूं। छोटी सी तरंग भी मेरे कारण जीवन के समुद्र में नहीं उठ रही है। हमारे चाचा जब जब इस नकुचपन से त्रस्त होते परिवार में लड़ाई करवा देते। खाना खाते खाते चिल्लाते, दाल में क्या डाल दिया, कड़वी लगती है, मुझे मार डालोगे क्या। हम कहते, दाल तो बिल्कुल ठीक है। वो कहते, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, भगवान की कसम। परिवार में आपस में लड़ाई मच जाती। हम देखते कि हम तो लड़ रहे हैं पर चाचा आराम से सो रहे हैं। तूफान खड़ा कर देने में सफलता से उन्हें अपने अस्तित्व और अर्थ का बोध होता और मन को चैन मिलता। हाल ही में रिटायर्ड एक सज्जन मिले। मैंने पूछा, वक्त कैसे कटता है। वे बताने लगे, भगवान ने फुर्सत दी है तो 4 घंटे तो उनकी पूजा करते हैं। मुझे भगवान पर दया आई। सर्वशक्तिमान की भी मेरे जैसी गत 4 घंटे रोज होती है। यो वे ठीक ही कहते हैं कि भगवत भजन या और कोई अच्छा काम फुर्सत में ही किया जाता है। फुर्सत ही नहीं है तो आदमी अच्छे काम कैसे करे। भगवान से लेकर बेटे नाती पोते तक वक्त काटने के काम आते हैं। मेरे पड़ोस का लड़का बेकार था, वक्त उसका कटता नहीं था। उसके पिता के दोस्त रिटायर हुए, उनकी भी समस्या समय थी। दोनों एक दूसरे का वक्त काटने लगे। उम्र का फर्क मिट गया, वे बराबरी के हो गए। बुढ़ऊ दोपहर को आ जाते और शाम तक बातें करते। बातों के विषय खेती बाड़ी से लेकर बारातों के अनुभव तक होते। एक दिन मैंने सुना वे दोनों खूब जोर से लड़ रहे हैं। बुढ़ऊ कह रहे हैं, हमें मत सिखाओ, हमें जिंदगी भर तमाकू खाते हो गया। लड़का बोला, तुम्हें जिंदगी हो गई तो हम भी 10 साल से तमाकू खा रहे हैं, हम भी कुछ जानते हैं। मुद्दा क्या था झगड़े का? कुल ये कि चूने में मक्खन डालना चाहिए या नहीं, और डालना चाहिए तो कितना और किस तरह। उस दिन जब शाम को दोनों अलग हुए तो और दिनों से ज्यादा खुश थे, क्योंकि लड़ लिए थे। मेरे पास ही एक भले आदमी रहते थे। उनके ससुर रिटायर हुए तो कुछ महीनों के लिए लड़की दामाद के पास रहने को आ गए। वे गणित के अध्यापक थे, मेरे रिश्तेदार होते थे। वे मेरे पास आकर बैठ जाते, घंटों परिवार और रिश्तेदार और महंगाई की बातें करते। मुझे अखरने लगा। एक दिन जब वो आए, मैंने उनके बोलने के पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बात शुरू कर दी। कहा, देखिए, इसराइल ने अरब गणराज्य पर हमला कर दिया। सायोनवादी राज्य की स्थापना का वायदा 1917 में ब्रिटिश विदेश सचिव लॉर्ड बेलपुट ने कर दिया था। 5-7 मिनट तक जब मैं अरब इसराइल संबंध और शीत युद्ध की बात करता रहा तो वे ऊब उठे। इस सबसे उनका वास्ता ही नहीं था। वे उठे, बोले, जरा नहा लूं। मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें नहलवा दिया। 2-3 दिन ये नुस्खा आजमाने के बाद वो या तो आते नहीं, आते भी तो 5-10 मिनट ही बैठते। वे डरते थे कि ज्यादा बैठा तो ये दुष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें शुरू कर देगा। मगर अब उनके बेटी दामाद परेशान रहने लगे। मैंने उन्हें सलाह दी कि इन्हें किसी काम में लगा दो। कहो कि बाबूजी, मुन्ना गणित में कमजोर है, इसे पढ़ा दिया करिए। गणित के अध्यापक की यह कमजोरी है, वो दुनिया में किसी को गणित में कमजोर नहीं देख सकता। मैंने देखा वो नाती को गणित पढ़ाने लगे और खुश हैं। पर एक दिन लड़का रोकर बोला, ये नाना जी हमें गणित पढ़ा पढ़ा कर मारे डाल रहे हैं। वो लड़के के पीछे पड़ गए थे। अब मैं बुजुर्गों से डरने लगा हूं, पर वो नाराज ना हो, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश कर रहा हूं। रिटायर्ड आदमी की यह समस्या मानवीय और सामाजिक है। समाज का एक हिस्सा हमेशा गिरे मन का, न कुछ पन के बोझ से भरा, सिर्फ समय का बोझ ढोता रहे, यह अच्छा नहीं। समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि वो अपने रिटायर्ड लोगों का क्या करता है। अगर कुछ नहीं करता तो रिटायर्ड वृद्ध काम करते युवा के काम में दखल देगा और समाज की कर्मशक्ति घटेगी। युवा इंजीनियर काम कर रहा है, तभी रिटायर्ड इंजीनियर आ जाएंगे और कहेंगे, क्या हो रहा है, हमारे जमाने में ऐसी मशीनें नहीं होती थी। वो अपने जमाने की मशीन को मार डालेंगे। पुरानी मशीन से नई मशीन की रक्षा करनी पड़ेगी। पुरानी मशीन को किसी काम में लगाना पड़ेगा। काम ना मिले तो कम से कम ये तो हो ही सकता है कि पुरानी मशीनें एक दूसरे की जंग साफ करते वक्त गुजार दें। आज की कहानी आपको कैसी लगी, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।